बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम अपनी कॉन्वर्सेशंस के हवाले से उसके पहले हिस्से का मैंने ये आपसे अर्ज किया था कि इसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक ये कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बेहतर बनाएंगे, और दूसरा ये कि हम दूसरों की अंडरस्टैंडिंग में, अगर वो चाहें, ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है जो इसमें इन्वॉल्व है कि इफ समबडी डज नॉट वॉन्ट टू इम्प्रूव और टू लर्न एनी थिंग देन वी कैन नॉट फोर्स लर्निंग अपॉन एनी वन। तो सबसे पहली जो चीज थी वो ये कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को किस तरह बेहतर करें। इसमें चंद पॉइंट्स मैंने जो लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किए थे, मैं सिर्फ उनकी ब्रीफली आई वुड लाइक टू समराइज देम सो दैट हम आगे इसको कंटिन्यू करें। अच्छा जी, जो हमारी बात थी वो बेसिकली ये थी कि सबसे पहले तो ये कि हमारा जो मकसद है कॉन्वर्सेशंस का, वो ना तो किसी के साथ डिबेट्स को जीतना है, ना हमारा मकसद ये है कि हम अपनी बढ़तरी उन पर वाजे करें, बल्कि मकसद ये है कि हम कुछ सीखें, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करें और अपने रिलेशनशिप्स को एनहेंस करें। एक चीज जो मैंने पिछली दफा भी स्ट्रेस करने की कोशिश की थी वो ये कि इंसानी ताल्लुक जो है उसमें एक मेजर इनपुट वो कॉन्वर्सेशन है। हम जिन लोगों के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे होते हैं उनके साथ अगर आप अक्सर औकात देखिएगा कि हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी। तो सबसे पहले तो इस मकसद को सामने रखिए। नंबर दो ये कि हमारी जो लिसनिंग है इट शुड बी अटेंटिव एंड एम्पैथिक। मैं इस वक्त सिर्फ इन पॉइंट्स को एक ब्रीफली कवर कर रहा हूँ जी, सो दैट आपके जहन में ये ताज़ा हो जाए एंड यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे इनशाला। तीसरी ये कि अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत अवेयर रहें आप, यानी जैसे ही आपकी आपकी फीलिंग्स में एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस पैदा होती है तो इसका मतलब असल में ये होता है कि आप बजाय इसके कि बात सुन रहे हो किसी दूसरे की, आप उसको जज करने लग पड़े हैं। आप अपने लर्नर माइंडसेट से हटकर यू हैव बिकम मोर ऑफ अ जजर, यू हैव बिकम अ जज, और आपकी जो जजमेंट है जनरली वो जब फीलिंग नेगेटिव होगी, नेगेटिव से मेरी मुराद ये है कि एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, तो इस सूरत हाल में आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो जजमेंट है वो नेगेटिव हो रही है। यू आर नॉट जजिंग दैट द अदर पर्सन इज सेइंग द राइट थिंग, इनफैक्ट यू आर जजिंग अदरवाइज दैट यू आर प्राइमरली आस्किंग द अदर पर्सन कि वो, या उसके बारे में ये फैसला कर रहे हैं कि वो बात ठीक नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तीसरी चीज जो, चौथी चीज जो हमने कही थी वो ये थी कि वी शुड अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव। हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसका स्टैंड पॉइंट को समझें, वो किधर खड़े हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, और वो जो बात अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरी बात के खिलाफ है, तो मैं ये कोशिश करूं कि उनके जाविया निगाह को समझने की कोशिश करूं, वो किस जगह पे खड़े होकर मामले को देख रहे हैं, उनके और मेरे जाविया निगाह में क्या फर्क है, मेरे और उनके पर्सपेक्टिव में क्या फर्क है। और इसको अगली ही बात ये कही थी कि इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करें कि हम किसी के पर्सपेक्टिव को जज करें कि ये ठीक है या गलत है। ये वो चीजें हैं जिनको के आप के लिए जरूरी होंगी अगर आप सीखना चाहते हैं। इफ द आइडिया इज टू लर्न फ्रॉम व्हाट इज बीइंग सेड, इफ द आइडिया इज कि हम दूसरों की बात से सीखें, तो फिर ये चीजें जरूरी हैं। और फिर अगली बात जो हमने कही थी, छठा पॉइंट ये था कि वी शुड नॉट बी शाई अबाउट आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन। खास तौर पर यह मसला तब पैदा हो जाता है कि जिस वक्त हम ग्रुप में बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर सिटिंग इन अ ग्रुप और कोई भी सवाल ना पूछ रहा हो, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा कि हम उठकर तो ये बताएं, क्योंकि ये हमारे जहन में जो चीज चल रही होती है वो ये होती है कि कहीं मैं अकेला ही हूं शायद जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही, और अगर मैं अकेला ही हूं तो शायद ये कोई मेरी मेरे फहम की कमी है, मेरी समझ की कमी है, मेरी अकल की कमी है, तो मैं इस चीज को बजाय इसके कि दूसरों पर वाजे करूं, मैं इस चीज को अपने तक ही महदूद रखूं और अपने आप इससे बचाऊं कि दूसरों को ही पता चले। तो ये जो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं इनको हमें अपने अंदर रखना है व्हाइल वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम अ कॉन्वर्सेशन। तो हम यहां से आगे चल रहे हैं जी। लास्ट टाइम ये यहां तक बात पहुंची थी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब जब इख्तलाफ महसूस हो, वेन एवर यू फील दैट देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वेन एवर यू फील दैट यू आर नॉट एग्रीइंग विद व्हाट इज बीइंग सेड, तो कोशिश करें कि बात को बजाय उस डिसएग्रीमेंट को शो करने के, आप ये समझने की कोशिश करें कि दूसरा जिस जगह पे खड़ा है उसकी क्या अजम्पशंस हैं। इस पे मैंने आपको दूसरे सेशन में ये वादे किया था कि जिस चीज को हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसमें हम तीन किस्म की अजम्पशंस हैं जिनको देखते हैं, कॉजल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड पैराडाइमेटिक। ये जो कॉजल अजम्पशंस होती हैं, ये वो होती हैं जो कॉज एंड इफेक्ट बयान करती हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये जब किसी चीज में अजम्पशन मौजूद होगी तो इसको कॉजल अजम्पशन कहते हैं, यानी समथिंग इज द कॉज ऑफ अनदर थिंग। लेट्स से इफ यू से दैट इफ यू वांट द चाइल्ड टू बी reared in a into a good human being, तो फिर आपको उसके साथ स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी कॉजल अजम्पशन ये है कि स्ट्रिक्टनेस जो है वो अच्छा इंसान पैदा करने में मददगार होती है। ये कॉजल अजम्पशन है। प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशन इससे काफी रिलेटेड होती है। आपके जहन में जो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप्स होते हैं, आप उन्हीं की रोशनी में प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशंस अपनी तय करते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशंस की मिसाल ये है कि जब भी किसी स्टेटमेंट में चाहिए या शुड आएगा तो वो प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशन होगी। फॉर इंस्टेंस, इफ यू से दैट अ गुड टीचर शुड हैव स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द क्लास, दैट मीन्स दैट दिस जो स्पीकर है उसकी प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशन ये है कि अच्छे टीचर को का कंट्रोल होना चाहिए, और जिस टीचर का कंट्रोल नहीं होगा वो अच्छा टीचर नहीं समझा जाएगा। और पैराडाइमेटिक अजम्पशंस आर दोज विच आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू अनकवर। ये वो होती हैं कि जो आपने जो भी स्टेटमेंट पढ़ी है उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर टीचर, स्टूडेंट, लर्निंग, स्ट्रिक्टनेस, गुड ह्यूमन बीइंग, ये इसके बारे में आपका ओवरऑल जनरल नुक्ता नजर क्या है। जब आप इस चीज के बारे में गौर करते हैं कि वो नुक्ता नजर क्या है, ये भी असल में अजम्पशन होती हैं। अजम्पशन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लाजमन गलत हैं या अनकंसिडर्ड हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमने इसके बारे में जो भी हमारी राय है इस वक्त उसके बारे में, उसको हम अच्छी तरह से गौर व फिक्र कर लें कि क्या ये बात हम सोच समझ के इसके इसकी अजम्पशंस को जान के कह रहे हैं, या ये कि हमने इसको कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें ली हुई हैं जिनके बारे में अभी हमने टेस्ट नहीं किया। वेन एवर देर इज अ डिफरेंस, जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आपको मेरी कोई बात अगर ठीक नहीं लग रही, तो बजाय इसके कि आप उसको फौरन खत्म कर दें अपने जहन से, आप कोशिश कीजिए कि इस बात के अंदर मौजूद कॉजल, प्रिस्क्रिप्टिव और पैराडाइमेटिक अजम्पशंस को अनकवर करके मेरे साथ शेयर करें। व्हेन यू विल शेयर दैट, तो इसका बहुत इम्कान होगा कि अगर मैं बोलने वाला हूं तो इसका बहुत इम्कान होगा कि मैंने उनमें से कुछ प्रिस्क्रिप्टिव, कुछ कॉजल या कुछ पैराडाइमेटिक अजम्पशंस को कंसिडर ना किया हो, उनके ऊपर बहुत ज्यादा गौर ना किया हो। और जिस वक्त गौर ना किया हो तो ये हो सकता है कि मैं उनको विदाउट सफिशेंट ग्राउंड आई एम टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड टू बी ट्रू। जैसे ही आप उसको सामने लेके आएंगे तो मुझे इस चीज का मौका मिल जाता है कि मैं उस पर गौर करके अपनी ओपिनियन को रिफाइन कर सकता हूं। दिस इज ऑब्वियसली व्हेन आई वांट टू लर्न, दिस कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। ये जो रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, इसके बारे में मैंने आपको उस सेकेंड सेशन में भी ये गुजारिश की थी और अभी भी, और हम जब अपनी ये वर्कशॉप करते हैं तो उसमें काफी सारे सेशंस हम इसकी प्रैक्टिस पे लगाते हैं, बहुत सारी मिसालें लेकर उसके ऊपर गौर करते हैं ताकि हमको इसकी प्रैक्टिस हो। ये किसी की बात के बारे में क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना एक आसान काम नहीं है, अपनी बात के बारे में उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए जरूरी है कि नंबर एक ये कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो इस स्किल की। ये जो स्किल है जिसको हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कहते हैं, You are well practiced in it, number one. Number two, ये कि आपने अच्छी तरह से तवज्जो से बात सुनी हो और empathically बात सुनी हो और reflectively बात सुनी हो, गौर फिक्र करके बात सुनी हो, ना कि उसको महज सुपरफिशियली सुन के अपने, देखिए मैं जब ये कहता हूँ सुपरफिशियली सुनना, तो उसकी मैंने मिसाल दी थी लास्ट टाइम। अक्सर औकात ये होता है कि जिस वक्त हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, तो बजाय सुनने के हम अंदर ही अंदर ये सोच रहे होते हैं कि इस बात का जवाब क्या है। सो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट एन आंसर रादर देन लिसनिंग, तो इस चीज को हमेशा अपने जहन में बड़ा ताजा रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा दैट योर ह्यूमन ब्रेन, आवर ह्यूमन ब्रेन डज नॉट हैव दिस पोटेंशियल टू फोकस ऑन टू थिंग्स एट द सेम टाइम। इट इज एन इनक्रेडिबल मशीनरी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यानी इंसान की जो ये दिमाग है इंसान का, ये एक इनक्रेडिबल मशीनरी होने के बावजूद इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये दो चीजों पे बयक वक्त फोकस नहीं कर सकता। आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो काम आप मोटर स्किल से कर रहे हैं, जिसकी आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बारे में। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर ड्राइविंग, तो आप ड्राइव करते हुए बात कर सकते हैं, ठीक है जी। बट इवन देन होगा क्या कि आपका जो बात करने में अगर कोई ऐसी बात हो गई है जिस पर फौरन आप अचंभे में पड़ गए हैं, सरप्राइज हो गए हैं, तो आपका ड्राइविंग से तवज्जो हट जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ये टेक्सटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और ड्राइव करते हुए बात भी नहीं करनी चाहिए फोन पे। इसी तरह से आप कभी इस चीज को ट्राई करके देखिएगा, वाइल लिसनिंग टू समथिंग ट्राई राइटिंग समथिंग डाउन। ये हम करते हैं जी, यानी दिस इज समथिंग दैट वी नॉर्मली डू इन आवर लाइफ। हम क्या करते हैं कि कोई बात कर रहा है हमारे साथ, बैठा हुआ है कोई बात कर रहा है, तो हम उसके साथ बात सुनते हुए सारे लाते रहेंगे और साथ साथ अपनी टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे होंगे। सो इस चीज को कभी गौर कीजिएगा कि सम टाइम अगर कोई बात हो रही है तो आपकी या तो बात से तवज्जो हट जाएगी या उस मैसेज से तवज्जो हट जाएगी जो आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी ट्रूली अटेंटिव। ये जो मैंने 7th पॉइंट आपके साथ शेयर किया है दैट हम किसी की बात सुनते हुए वी शुड ट्राई टू बी क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव, ये तभी हो सकता है जब हमने बात को बड़ा अटेंटिवली सुना हो, एम्पैथिकली सुना हो और रिफ्लेक्टिवली सुना हो, और हमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। अगली बात जो इस जमन में मैं शेयर करता हूँ जी, वो ये कि वी शुड नेवर अज्यूम दैट वी हैव अंडरस्टूड द अदर पर्सन ओपिनियन विदाउट गेटिंग अ कॉन्फर्मेशन फॉर इट। आप किसी से बात कर रहे हैं तो बजाय इसके कि ये अज्यूम करें कि मैंने आपकी बात समझ ली है, आमतौर पर ये होता है कि हम पूरी बात भी नहीं सुनते और हम ये समझ लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं। स्पेशली अगर आप अपने एजुकेशनल सेक्टर में देखें, तो जब कोई बच्चा हमसे बात करता है तो हम आम तौर पर हमारा रवैया ये होता है कि हम उसकी बात पूरी तरह सुनते भी नहीं है और पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने बात समझ ली है। ये एक तो डिसरिस्पेक्टफुल है जी, इट्स अ हाईली डिसरिस्पेक्टफुल थिंग टू डू कि आप अगले की बात को काटें चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, नंबर एक। नंबर दो ये कि इस अजम्पशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर उसने बात नहीं समझी है तो ये जो बात है ये आर्गूमेंट बन जाएगी, अगला आपके जवाब में ये कहेगा कि आप मेरी बात समझ नहीं गए, ठीक है जी, एंड यू विल अगेन इट विल बी अ पिंग पोंग। तो बजाय इसके कि आप ये अज्यूम करें कि आप इसकी बात समझ गए हैं, गेट अ कॉन्फर्मेशन, बात कर लें, पुट इट ऑन द टेबल कि क्या आप ये कह रहे हैं, क्या इज दिस व्हाट यू मीन, उसको उससे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें। इसीलिए मैं यहां पर ये गुजारिश कर रहा हूं कि गेट अ कॉन्फर्मेशन बाय रीफ्रेजिंग इट, नॉट बाय रिपीटिंग इट, बाय रीफ्रेजिंग उनका व्यू जो है अपने वर्ड्स में रीफ्रेज करके देखें कि क्या आपने उसको ठीक समझा है। नंबर 9 पॉइंट ये है कि ऑलवेज बी ओपन टू एनरिचिंग, रिव्यूइंग, रिवाइजिंग एंड एडिंग टू योर आइडियाज। कभी भी इस चीज के मामले में कंप्लेसेंट ना हो कि जो कुछ हमारे पास है वो काफी है, हमें मजीद जानने की जरूरत नहीं है। दिस एटीट्यूड वुड बी डेथ ऑफ लर्निंग। देखिए आप एज अ ह्यूमन बीइंग, हमको ये मौका हर वक्त हासिल है कि हम हर सिचुएशन से सीख सकते हैं, इस मौके को जाया ना होने दें। वो जो सीखना है, कई मर्तबा वो सिर्फ इतना सीखना भी हो सकता है कि ये तरीका ठीक नहीं है चीजों को देखने का, ठीक है जी, बट यू विल एक्चुअली लर्न ओनली बाय पेइंग अटेंशन और ओनली बाय बीइंग ओपन टू लर्निंग। अगर हमने कभी भी अपनी जिंदगी में ये महसूस कर लिया कि हम जितना सीख चुके हैं उसके ऊपर अब नहीं जा सकते, तो फिर हमारे लिए कंप्लेसेंसी है जो बड़ी खतरनाक होती है जी। अपने अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करें, देखें आप जिंदगी को इधर से देखने में या एक इशू को एक पहलू से देखने में या दूसरे पहलू से देखने में क्या फर्क पड़ता है। इसकी इंशाल्लाह व्हेन वी टेक दिस अप दिस एक्सरसाइज, तो इसकी बड़ी मिसालें हैं जो हम इसको कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाने की गर्ज से इसको बयान करें। नंबर 10 इज ऑलवेज अज्यूम द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस इन अदर्स। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, स्पेशली स्पेशली अगर आपका किसी से तजर्बा हो चुका है और आप का अच्छा तजर्बा नहीं हुआ है, तो फिर इस सूरत हाल में ये जो क्वालिटी है कि अपने अपने मुखातिब की इंटेंशंस पर शक ना करें, ये एक बड़ी मुश्किल डिमांड होती है जो हमारे लिए अक्सर औकात पूरी करनी मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले तो इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करनी है। एज वी प्रोग्रेस इन द वर्कशॉप, हम कोशिश ये करते हैं कि इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जिसमें हम बाय बाय गोइंग थ्रू दोज एक्सरसाइजेज वी कैन अंडरस्टैंड आवर पैटर्न्स। हमारे कुछ मेंटल पैटर्न्स हैं, अगर एक आदमी इस तरह से देख रहा है तो इसका मतलब है वो गुस्से में है, अगर एक आदमी एक तरह से बात सुन रहा है तो इसका मतलब है वो प्रिटेंड कर रहा है। ये जो सारी चीजें हमने अपनी जिंदगी में सीखी हैं वो कुछ हमने पैटर्न्स बना लिए हैं। अब वो पैटर्न्स हमें जब जब नजर आते हैं तो हमारा ये ख्याल होता है कि ये वही हो रहा है जो कि नापसंदीदा है फॉर इंस्टेंस मेरे लिए। तो इसी तरह से इंटेंशंस, अगर एक आदमी ने आपके साथ किसी मौके पर सही बयान नहीं किया हुआ तो आप उस बात को अपनी मेमोरी में रखते हुए आज भी ये समझते हैं कि वो ठीक बात नहीं कर रहा। तो दीज थिंग्स हम इनसे कैसे, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ इट। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि एक इंसान को बार बार धोखा खाना चाहिए, ये मकसद नहीं है जी, लेकिन अगर आपका ये तजर्बा है तो इस सूरत हाल में हम ये कम से कम शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ कि ये तजर्बा है जो हमें बात सुनने में इस वक्त रुकावट हो बना हुआ है। सो हेल्प अस गेट आउट ऑफ इट। तो ये जो हमारा 10th पॉइंट है, ये मैं ये अर्ज कर चुका हूँ कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड, और ये भी प्रैक्टिस से हो जाता है जी। हम पहले बात को सुन लें, इसके बाद जजमेंट की बात बाद में आएगी, पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट लेट्स ट्राई टू गेट द जिस्ट द होल थिंग ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू अस। इसके बाद जी आखिरी बात जो इस जीवन में है वो ये कि बी पेशेंट। हर आदमी के बात करने का तरीका डिफरेंट है, आप में से कुछ लोग जो हैं दे विल टॉक मोर डिडक्टिवली, हमारी कुछ तरी कुछ लोगों की बात करने का तरीका बड़ा लॉजिकल होता है, वो स्ट्रेट बात करेंगे। कुछ लोग अपनी बात को एक्सपीरियंशियली शेयर करते हैं। जब हम वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं तो इसमें तरह तरह के लोग आते हैं और कई मरतबा ये चीज किसी के जहन में पैदा हो सकती है कि हम बात छोटी करें। हर आदमी अपने स्टैंडर्ड से बात करता है और जब तक कि वो उसका स्टैंडर्ड है, यकीनन हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमें टाइम डिवाइड करना है, बट एवरी पर्सन हैज इज ओन वे ऑफ टॉकिंग, एवरी पर्सन हैज इज ओन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। ये जो जिंदगी में ये डाइवर्सिटी है यही इसमें खूबसूरती पैदा करती है। तो हम इस खूबसूरती से फायदा उठाते हुए लेट अस ट्राई टू वैल्यू आवर डिफरेंसेस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं और किस तरह से हम बात अपनी कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम बात मैं एक तरह से बात करता हूँ, इसका ये लाजमी मतलब नहीं है कि मेरे तमाम शागिर्दों को इसी तरह बात करनी चाहिए या मेरे तमाम साथियों को इस तरह बात करनी चाहिए या फॉर दैट मैटर मेरी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट सारे के सारे वो तब करें कि जब वो इस तरह बात करते हो, दैट वुड बी अनफेयर। ठीक है जी। सो समटाइम्स सम पीपल माइट टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, सम पीपल विल गेट द प्रिंसिपल्स आउट ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। अगेन इसको समझ लें, कुछ लोग अपनी जिंदगी के तजर्बात आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ लोग अपने तजर्बात से हासिल होने वाले असबाक शेयर करेंगे, कुछ लोग उन असबाक से निकलने वाले प्रिंसिपल शेयर करेंगे। ये सारे तरीके हैं जी, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग। इसको समझना, और किसी का अगर तजर्बा है उसकी किस तरह से हम, हाउ डू वी आस्क क्वेश्चंस टू दैट पर्सन जो अपने एक्सपीरियंशियल कम्युनिकेशन करता है, हाउ डू वी आस्क क्वेश्चंस टू द पर्सन जो अपने तजर्बात के बजाय अपने प्रिंसिपल्स को शेयर कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस, मैं इसकी आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक आदमी जो है वो अपना तजर्बा अगर शेयर कर रहा है, तो आप उससे एक सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल ये पूछ सकते हैं कि इस तजर्बे से आपके ख्याल में क्या लेसन्स हैं जो हमें मिलते हैं, या आपने क्या लेसन्स डिराइव किए हैं, या हम इसके अलावा क्या लेसन्स डिराइव कर सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं, ये असल में हमको, हमारी भी और दूसरे की भी लर्निंग को कंट्रीब्यूट करेंगी। ये चंद वो पॉइंट्स हैं, 11 टू बी प्रिसाइज, कि जिनको मैं कोशिश करता हूं कि अपने पार्टिसिपेंट्स को प्रैक्टिस भी कराई जाए इनकी। और आप यूं समझ लें कि हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें हमारा, मेरे और पार्टनर्स जो हैं उनके साथ जो गुफ्तगू भी हुई, हमारा अब ये ख्याल है कि हर पॉइंट पर असल में वी शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम इसके बाद हम जो दूसरी चीज करते हैं वो ये है कि हमने अब वी हैव टू हेल्प द अदर पर्सन अंडरस्टैंड। यहां तक जो बात थी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग की एनहेंसमेंट थी, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करना है। ठीक है जी, इसके लिए जो कुछ करना है वो मैंने करना है, इससे कतई नजर के दूसरा किस तरह बात कर रहा है या दूसरा के क्या अप्रोच रखता है जिंदगी के बारे में, क्योंकि मैंने समझना है। आई कैन ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। लेकिन इसके बरक्स अब जो अगला स्टेप शुरू होता है, जिधर के हम बात यहां पर ये करेंगे कि हम दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करें, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं वो ये है कि अपनी अपनी बात को ऑफेंसिव ना होने दें, अपनी बात को अच्छा रखें। ठीक है जी, अपनी बात को इजी टू कॉम्प्रिहेंड रखें। लेकिन क्या दूसरे की लर्निंग में हम फिर वाकई कंट्रीब्यूट कर पाएंगे या नहीं, ये हमारे बस में नहीं होगी, अनलेस कि ये जो प्रिंसिपल जो अभी हमने आपके साथ शेयर किए अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के हवाले से, ये वो भी इनसे एग्री करते हों और वो भी इन पर अमल करने को तैयार हों। ठीक है जी, बिकॉज वेन एवर वी आर कन्वर्सिंग, एक चीज को ध्यान में रखिएगा, अच्छी कॉन्वर्सेशन, लर्निंग कॉन्वर्सेशन, ये तकाजा करती हैं कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हों। जिधर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं होंगे उधर बेसिकली लर्निंग भी नहीं होगी। यानी यू लर्न वेन देर इज अ डिफरेंस, यू लर्न वेन देर इज समथिंग न्यू दैट इज बीइंग टोल्ड। अगर आपको जो चीज भी बताई जा रही है वो ऑलरेडी मालूम है तो इससे लर्निंग नहीं होगी। कुछ भी हो सकता है, यू माइट एंजॉय अ गुड जोक और यू माइट एंजॉय अ गुड मेटाफॉर वट एवर, लेकिन जब भी लर्निंग वाकई होगी तो उसमें देर विल बी अ डिफरेंस, कोई चीज नई आएगी आपके सामने, उसको रिसीव करना आपका काम है। इसी तरीके पर जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो लर्निंग तब होगी जब वो रिसीव करने के लिए भी तैयार हो। हम अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, बट द आइडिया इज कि जब भी कभी ये प्रॉब्लम पैदा हो तो आपने अपने ऊपर गौर करना है। यानी ये हमारी पूरी की पूरी वर्कशॉप्स में एक, यूं समझ ले, कॉमन थ्रेड है। ठीक है जी, पूरी वर्कशॉप्स में भी मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी यही बात शेयर करता हूँ दैट आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। मसला ये नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने हार तो नहीं मान ली, मैंने कहीं डग तो नहीं डाल दिया, मैंने कहीं हिम्मत तो नहीं छोड़ दी, कहीं मेरी तरफ से तो कमिटमेंट पे कमी नहीं हो गई। यानी ये जो एस्पेक्ट है मुझे इसको ठीक रखना है, दूसरे ने कितना गेन करना है कितना नहीं करना है, ये उसकी हिम्मत भी है, उसका फैसला भी है और उसको अल्लाह ताला की तरफ से उसकी तौफीक भी है। मैं यहाँ पर बात अपनी आज के लिए रोक देता हूँ जी। जी
सर मैं बाय प्रोफेशन
जी
इंजीनियर
जी
हूँ और मोस्ट ऑफ टाइम ये जो एक्सपीरियंस करता हूँ मैं वो ये होता है कि जो क्लाइंट में हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो जब हमारी कोई डिस्कशन होती है किसी टेक्निकल टॉपिक के ऊपर तो वो उस बात को जो उनकी तरफ से इनपुट आती है वो कह लें कि गलत होती है टेक्निकली और उनको टेक्निकल मीन्स कि उसमें कोई जिस तरह 1+1 2 है अब वो कोई बंदा अगर 1+1 2 ही नहीं समझता तो उसको हम किस तरह कन्विंस कर सकते हैं।
ये जो बात आपने फरमाई है, ये देखिए, ये मिसाल तो इतनी वाजे है कि ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी जो है 1+1 2 ना समझे। लेकिन इसको एक थोड़े से देर के लिए उस बच्चे के पहलू से देखिए कि जो 1+1 2 नहीं देख रहा, ठीक है जी, वो कैसे देख रहा है। हाउ इज ही इज द दैट चाइल्ड अराइविंग एट अ डिफरेंट सोल्यूशन। वो 1+1 3 क्यों कह रहा है। अगर आप इसको समझ पाएंगे, ये जरूरी है जी हमजा साहब, दैट इफ आई अंडरस्टैंड व्हाई द अदर पर्सन इज नॉट सीइंग द प्रॉब्लम एज आई एम सीइंग इट, और इज नॉट प्रपोजिंग द सोल्यूशन दैट आई एम प्रपोजिंग, तो इसके नतीजे में जैसे ही मैं ये समझूंगा ना, तो मुझे समझ में ये आएगा कि वो किस पर्सपेक्टिव से मामले को अप्रोच कर रहा है। इसके बाद ये पॉसिबल है कि मेरी नजर में वो ठीक ना हो, लेकिन अब मुझे उसको कम्युनिकेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी जो आप जब बात फरमाते हैं कि आप एक इंजीनियर हैं, और एक इंजीनियर जो आपने बात फरमाई है, लेट मी ट्रांसलेट इट इन इन अ डिफरेंट वे, आपने ये बात फरमाई है कि एक इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से जब लोग आपसे बात करते हैं, मार्केटिंग वाले या इस तरह दूसरी फील्ड के, नॉन टेक्निकल फील्ड के लोग, तो उनका पर्सपेक्टिव असल में आप बड़ा क्लियरली जान सकते हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज रॉन्ग। वो आपके लिए काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है, काउंटर टेक्निकल हो जाता है। असल में जो चैलेंज है इस मौके पर आपके लिए, वो ये है कि ये देखना कि उनके लिए ये कैसे, हाउ डज दैट दैट पर्सपेक्टिव जो आपके नजर में इतना ऑब्वियसली फ्लॉड है, वो एक लॉजिकल आदमी किस तरह से ठीक मान सकता है। ये जब आप समझ लेंगे, तो असल में आपकी कम्युनिकेशन उनसे बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं हमजा साहब आपकी बात का कुछ जवाब दे पाया हूँ जी, प्लीज लेट मी नो अगर कोई।
जी सर, जजाकल्लाह। बस एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि जो हमारे क्लाइंट है वो भी इंजीनियर है,
राइट
एंड ही इज फ्रॉम द सेम फील्ड एज आई एम। तो
राइट
इस तनाजुर में हम कैसे उसको कन्वे कर सकते हैं?
इसका मतलब है कि वो इंजीनियरिंग की फील्ड को या आपके पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं, ज्यादा करीब है आपके, एंड स्टिल देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो
यस,
मुझे
करेक्ट।
इसमें व्हाट आई फील इज दैट देयर विल बी अ मच बेटर चांस टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस केस, अगर आप पहले अपनी बात समझाने के, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर। ये भी हमारा एक मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जी, कि कॉन्वर्सेशंस को क्वेश्चंस में कैसे बदला जाए, बजाय इसके कि हम सॉल्यूशंस दें, हाउ डू वी चेंज आवर कॉन्वर्सेशंस इनटू क्वेश्चंस व्हिच विल बी मच मोर इफेक्टिव, व्हिच विल बी मच मोर इम्पैक्टफुल। वो क्या सवालात हैं आपकी नजर में कि जो अगर उनसे पूछे जाएं, तो आपको उनकी उनकी अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी।
जजाकअल्लाह सर, दैट्स रियली हेल्पफुल। और ये
सर, मेरा सवाल ये था कि जो 0.7 आपने बताया था, उसमें आपने कहा था कि हमारा माइंड जो है वो एक इनक्रेडिबल मशीन है, लेकिन अगर हम उसी वक्त जो है कन्वर्सेशन के दरमियान हम जवाब देने का सोचने लगे, तो वो हम जो है एट अ टाइम हम फोकस नहीं कर सकते दोनों चीजों पे। लेकिन सर, अगर उसको समझते हुए सवाल दरमियान में आने लगे और सवाल सोचने लगे, तो ये जो आपने शायद आखिर में बात की है, वो फिर उसका जवाब शायद वही बन रहा है कि अगर हम सवाल करना चाहें उसको समझते हुए, तो ये भी उसी चीज में आ जाएगा कि हम उस पर फोकस नहीं करके कर रहे, बल्कि सवाल पे फोकस कर रहे हैं।
सवाल की दो किस्में हैं जी, ठीक है जी, इसको एक तो ये दो किस्में तो नहीं है, बहुत सारी किस्में हैं। चंद किस्में ऐसी हैं कि जिनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। नंबर एक ये कि जब आप अच्छी कॉन्वर्सेशंस के लिए, व्हेन यू अप्रोच अ गुड कॉन्वर्सेशन, यू शुड नेवर आस्क अ क्वेश्चन जिसका जवाब आपको पहले से पता हो। यानी फॉर इंस्टेंस, मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको रोजमर्रा की जिंदगी से, कि अगर आपकी आपका बेटा जो है 4-5 साल का, उसकी उसको आपने मना किया है कि चॉकलेट नहीं खानी, वो फ्रिज के ऊपर रखी हुई है, चॉकलेट नहीं खानी, और आपने उसकी शक्ल देखी और उसके मुंह पे चॉकलेट लगी हुई है, तो आप उससे अगर ये पूछते हैं कि आपने चॉकलेट खाई है, तो असल में यू ऑलरेडी नो द आंसर। दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट शुड बी आस्क्ड, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये। नंबर दो ये कि ऐसा सवाल ना कीजिए कि जो असल में दूसरे को फंसाने के लिए किया जा रहा हो या दूसरे की गलती वाजे करने के लिए किया जा रहा हो। ऐसा सवाल कीजिए कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाए। देखिए ये जो पूरी की पूरी हमने अभी तक ये 11 पॉइंट्स जिक्र किया ना जी, इसमें अगर एक कॉमन थ्रेड ढूंढिए आप, तो कॉमन थ्रेड ये है कि हमारा मुखातब जो है या हम जिससे कॉन्वर्स कर रहे हैं, हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक लॉजिकल और एक रीजनेबल आदमी है। ठीक है जी, और इस अजम्पशन को खराब ना होने दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इस चीज से खुद अपने आप को हटाएंगे तो ये आपकी गलती होगी। वी शुड नॉट अज्यूम कि वो मेरा जो मुखातब है वो इलॉजिकल है या अनरीजनेबल है। तो इसलिए जो भी सवाल आपके जहन में आते हैं, अपने आप को ये चेक कर लें कि दीज क्वेश्चन शुड बी टू एनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट टू प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट टू प्रूव दैट द अदर पर्सन इज रॉन्ग, नंबर वन। नंबर टू, डोंट आस्क क्वेश्चंस के जिनका जवाब आपको पहले से मालूम है। ये तो ये वाला जो सेकंड रूल है ना जी, ये तो बच्चों के साथ भी अडॉप्ट करने कि मैं इसको भी अवॉइड करूं कि सवाल करना कि जिसके बारे में मुझे मालूम है। देखिए एक ये कि मालूम नहीं है, ठीक है, आपका शक है, ठीक है, आप उसको फिर ही पूरी बात करें, आप उनको बताएं, बच्चे को बताएं कि बेटा मुझे ये ख्याल हो रहा है कि ऐसा हुआ है, ठीक है, तो क्या ऐसा ठीक है? और अगर ऐसा ठीक है तो ठीक है, हम सबसे गलती होती है, यू नो, लेट्स लेट्स बी फेयर विद देम, दे आर नॉट द ओनली वंस टू मेक एनी मिस्टेक्स। तो ये एस्पेक्ट है जी। जी शबाना, आप मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ जी?
जी सर, काफी समझ आया। और सर वही वही आप ये भी कह रहे हैं ना कि वो जो कुछ इल्मियत झाड़ने वाले सवाल होते हैं जिसमें दूसरे बंदे को, जो इंसान
क्वाइट
वो
राइट,
अपनी इल्मियत झाड़ रहा होता
क्वाइट
है, तो
राइट।
वो भी गलत करने वाली चीज है सर। थैंक
अपनी
यू
लैंग्वेज को,
सर।
अपनी इल्मियत
जी
को
जी
मेरा ख्याल है अपनी कॉन्वर्सेशन के मुताबिक लेके आए। यानी अगर तो आपका मकसद ये है कि दूसरे पर प्रेशर डालना है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि जो दूसरे की समझ में ना आए और दूसरा थोड़ा सा खौफजदा हो जाए, तो फिर बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट द पर्पज इज, जो हमने पहले पॉइंट में लिखा है जी। ये है जी, व्हाट इफ वी फॉलो ऑल द एडवाइस दैट यू गेव बट वी आर एट द रिसीविंग एंड, दैट इज द वन वी आर टॉकिंग विद इज नॉट अंडरस्टैंडिंग अस एंड कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स दैट यू पॉइंटेड आउट। वेल, यू विल गेन इन एनी केस। देखिए अगर तो ये बात इस तरह से है कि आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और दूसरा नहीं कर रहे, तो इसका नुकसान आपको बहरहाल नहीं होगा जी। ठीक है जी, व्हाट विल हैपन, आई विल टेल यू व्हाट, वो ये होगा कि आप अगर ये सारी बात सुन लें, अपने इस सेशन के एजेंडा को, बजाय इसके कि ये हम करें कि हमने आज एक दूसरे की बात को सुनना है समझना है, हम इस सेशन के एजेंडा को ये कर लेते हैं कि आज मैंने सिर्फ आपकी बात सुननी है, और फिर एक नए सिरे से इस बात को शुरू करें, और फिर कोशिश करें अगर आपको ये बात ठीक लगती है जो मैंने अभी शेयर की है, कि पॉइंट शेयर किए हैं, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि उनके साथ ये शेयर करके देखिए कि क्या आप समझते हैं कि हम एक दूसरे को गेन, यू नो, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ईच अदर्स लर्निंग। और अगर ये कर सकते हैं, इफ यू थिंक दैट वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ईच अदर्स लर्निंग, देन होपफुली देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इंशाल्लाह इससे हम दोनों सीखेंगे, हम वी बोथ ऑफ अस विल गेट बेटर। अगर ये बात आपके लिए काबिले अमल है, काबिले कबूल है, तो फिर तो ठीक है, वरना कोई लाजिम नहीं है। फिर ऐसे ऐसे साहिब के साथ या ऐसी साहिबा के साथ आप तभी गुफ्तगू करें जब आप सिर्फ सीखने के मूड में हो, सिखाने के मूड में ना हो, या ये गलती वाजे करने के मूड में ना हो। बिकॉज अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि उनके दिल को भी खोलें। आमतौर पर वही गलती होती है जी हमसे, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉरगेट दैट दिस लाइफ इज अ जर्नी ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, आप जो कुछ हैं, आप सोचिए जरा, इस बात को जहन में लेके आइए कि आप आज जो कुछ हैं, अगर आप अच्छी कॉन्वर्सेशंस में ना पड़े होते, आपने कॉन्वर्सेशंस के थ्रू सीखा ना होता, वो कॉन्वर्सेशन स्कूल्स में भी हुई हैं, वो कॉन्वर्सेशंस घर में भी हुई हैं, वो गली में भी हुई हैं, मोहल्ले में भी हुई हैं, दोस्तों के साथ भी हुई हैं, बहनों भाइयों के साथ भी हुई हैं, अगर ये ना हुआ होता तो आज आपकी जितनी डेवलपमेंट हुई है वो नहीं हो सकती थी। तो मैंने जिस तरह ये अर्ज किया था the first point that we took, I think it was the third session, वो ये था कि इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है अच्छी कॉन्वर्सेशंस की हमारी अपनी जिंदगियों में. आप गेन कर लेंगे, अगर एक आदमी नहीं सीखना चाहता ना सीखे, आपका इससे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए जब आपकी ये प्रॉब्लम बनेगी तो असल में कुछ माइंड में ये आ रहा है फिर कि शायद हम इसको डिबेट बना रहे हैं, शायद ये जीत हार का मसला बन रहा है. इसको ना बनने दें. इंशाल्लाह यू विल गेन अ लॉट इन दिस वर्ल्ड इफ यू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स. तारिक जावेद साहब का सबसे पहला सवाल जो है जी कि विल यू शेयर द स्लाइड्स ऑफ टुडे सेशन. जी सर, मैंने amjad.moez मेरा ईमेल एड्रेस है जी, amjad.moez@gmail.com. जिन दोस्तों को भी आज की स्लाइड्स चाहिए हो मुझे ईमेल कर दें, आई विल सेंड देम टू यू इन सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट ताकि कोई ज्यादा साइज भी ना हो. मैं शेयर भेज दूंगा जी, लेकिन जाहिर है कि वो उन लोगों को भेज दूंगा जो मुझे ईमेल कर देंगे जिनको चाहिए होगी.
थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. अस्सलाम वालेकुम सर.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह.
सर आपने एक सेंटेंस कहा था कि दिस लाइफ इज अ जर्नी ऑफ लर्निंग. व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस दिस इज. मतलब इस जुमले में इतनी बड़ी विजडम है कि अगर वो हम समझ जाए तो शायद जिंदगी के बहुत से मामलात आपके लिए आसान हो जाते हैं. सर मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल डिफरेंसेस को हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं.
ये जो हमने सारी बात की जी, इसमें अभी ये वाला एस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आज जो सारी बात की है वो ये है कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझें. म्यूचुअल डिफरेंसेस असल में पर्सपेक्टिव के डिफरेंसेस से वजूद में आते हैं जी. हम दूसरा किधर खड़ा होके देख रहा है, ठीक है जी, मामले को किधर खड़ा होके समझ रहा है, मामले को किधर खड़ा होके वो बयान कर रहा है. हम जब ये समझने लग पड़ते हैं तो असल में म्यूचुअल डिफरेंसेस में अप्रिसिएशन पैदा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बजाय इसके दैट हम अपने 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 जो नतीजे फिक्र है उनको लेके एक दूसरे से टकरे मारते रहें. हम कोशिश करें कि एक दूसरे की जो नतीजे जिस तरह निकले हैं उस प्रोसेस में शामिल हों. एंड वंस वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस जिसके अंदर से दूसरे ने, क्योंकि हर एक के अपने जिंदगी के कुछ तजर्बात हैं जी, वो जो तजर्बात हैं उनके नतीजे में आपके पर्सपेक्टिव और मेरे पर्सपेक्टिव में डिफरेंसेस वजूद में आते हैं, ठीक है जी. अच्छा, वो जो तजर्बात है सिर्फ वो तजर्बात नहीं है बल्कि मेरी और आपकी उन तजर्बात की परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन भी है. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट जब मैं आपकी बात सुनूं तो मुझे इस चीज का एहसास हो कि मैं अपने तजर्बात को डिफरेंट तरीके से समझ सकता हूं. ये जब हम समझने लग पड़ते हैं तो ये प्रोसेस है जो लर्निंग का प्रोसेस होता है जी. म्यूचुअल डिफरेंसेस इनको वैल्यू किया जाए कि आप इस तरह देख रहे हैं तो आई हैव नेवर बीन एबल टू सी लाइफ फ्रॉम दिस एंगल, तो आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू. देखिए व्हेन एवर यू बिकम अ लर्नर, एंड इट्स अ डिफिकल्ट थिंग लेट मी टेल यू दिस, बिकॉज वी आर सोशली ट्रेन्ड नॉट टू बी वन, ठीक है जी. हमें डिस्कशन में कॉन्वर्सेशन में हमारी जो सोशल ट्रेनिंग है वो लर्निंग के बिल्कुल ऑपोजिट हुई हुई है. वो ये हुई हुई है कि आप असल में ज्यादा अकलमंद या ज्यादा समझदार तब हैं कि अगर आप डिबेट्स में और डिस्कशंस को जीतते हैं. जबकि जो
इसी से रिलेटेड मेरा यही सवाल एक और भी है कि व्हाई वी गेट डिफेंसिव ड्यूरिंग कन्वर्सेशन. बाज़ औक़ात हम बात कर रहे होते हैं तो अगला इंसान डिफेंसिव हो जाता है और वो उस हिसाब से फिर आपको जवाब दे रहा होता है.
जी जी,
हम डिफेंसिव हो जाते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं.
उसके पीछे यही होता है जी कि हम जज कर रहे होते हैं. ये मैंने जो आपको मेरा ख्याल है पॉइंट नंबर 3 था शायद, पॉइंट नंबर, लेट मी आई विल जस्ट चेक अगेन. आई थिंक वन ऑफ द पॉइंट्स दैट आई मेंशनड, दिस वाज पॉइंट नंबर 3, टू बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स.
राइट सर,
ठीक है जी. व्हेन यू फील दैट यू आर बीइंग थ्रेटन्ड, हमेशा जब भी आप डिफेंसिव होंगे उससे पहले एक फीलिंग आती है आपके अंदर. ये जो फीलिंग है ना जी, हम असल में हमारी एक और तरबियत, एक और कंडीशनिंग जो हुई भी है जिंदगी में वो ये हुई भी है कि फीलिंग्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए. यानी आप जब स्कूल में थे तो आपकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, ठीक है जी. इफ यू वर सैड एनी डे एनी गिवन डे यू वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस योर सैडनेस, द टीचर वुड नॉट थिंक कि यार इसको कोई ज्यादा अहसियत देनी चाहिए. यू शुड डिसरिगार्ड योर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को साइड पे रखो, इस वक्त काम करना है. और यही चीज हमारे दफ्तरों में भी होती है, लेकिन असल में हकीकत यह है कि आप जो कुछ हैं और आपकी फीलिंग्स जो कुछ हैं बिल्कुल नेचुरल हैं. ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने सीखी हुई है ये फीलिंग्स. इन फीलिंग्स से सबक हासिल करें, यानी एज सून एज यू डिवेलप अ सेंस ऑफ बीइंग थ्रेटन्ड, एज सून एज यू डिवेलप अ फियर इनसाइड यू व्हाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विद समबडी, तो आप उसके बाद आप डिफेंसिव होते हैं. आप अगर अवेयर हैं अपनी फीलिंग्स के साथ और अपने लेट्स से जैसे ही आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ थ्रेटन्ड, फीलिंग ऑफ फियर डेवलप हुआ है, तो अपने आप को कंट्रोल करके वापस उस जगह पर ले आए जिस जगह पर हम कह रहे हैं कि वी हैव टू बी लर्नर्स इन कॉन्वर्सेशन. इसके बाद कोई जरूरत नहीं होगी आपको डिफेंसिव होने की. डिफेंसिव होने का मतलब ये है primarily that somebody has actually told you that you are wrong and you have to prove that you are right.
Yes.
कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर अगर तो प्रॉब्लम ये है यानी कि मेरी गलती मुझ पर वाजे हो जाएगी और अगला समझना चाहता है तो फिर तो मैं उसको अपनी रीजन बता सकता हूँ. लेकिन अगर अगला समझना नहीं चाहता, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं. मैंने कई दफा ये देखा कि एक आदमी ने सवाल किया है और अगर आप उसका जवाब भी दे रहे हैं तो बड़े आराम से दूसरा ये कह देता है कि आप इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं. नहीं, डिफेंसिव होने का ये मतलब नहीं है. डिफेंसिव होने का मतलब ये है कि मुझे अगर अपनी गलती समझने के लिए कोई सवाल करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, वरना तो मुझे गलती समझ में नहीं आएगी. मिसाल के तौर पर आप इस क्लास के एंड पर समबडी सेज टू मी दैट आप दूसरों की बात तवज्जो से नहीं सुनते. ठीक है जी, इफ समबडी सेज टू मी दैट, तो मेरा ये हक होगा कि मैं उनसे कहूं कि मुझे प्लीज बताएं कि मैंने किस मौके पर इस तरह से किया. अगर अगर मैंने कुछ किया तो मैं बात समझने के हवाले से ये जानना चाहता हूं. अभी आप व्हेन यू म्यूटेड योरसेल्फ एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती थी कि शायद मैं आपकी बात खत्म नहीं होने देना चाहता हूँ. तो समटाइम्स वी अंडर इंटरप्रेट दी सिचुएशन डिफरेंटली और उसके नतीजे में हमारी कुछ आरा बन जाती है. इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरे को मौका दे देना चाहिए कि वो अपनी बात को वाजे कर लें.
मोई साहब, कई दफा ये होता है कि यू आर टॉकिंग और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं, बट द अदर पर्सन इज नॉट रेडी टू लिसन टू यू एंड दे हैव सम वेरी फिक्स्ड आइडियाज एंड बिफोर यू कैन इवन ट्राई एंड एक्सप्लेन they come up with their own point of view and it's like a shut up call to you, you know, this is it and you just keep quiet. In situations where should you just keep quiet as a learner and just listen to them, or as you say, it's not a debate, so you don't need to retort. What is the best way of maintaining a conversation when both people can talk and without trying to justify yourself but explaining yourself, explaining your point of view?
It's important, Ji, because we cannot understand, we cannot control the other person's attitude. It is very important that the other person should also be involved in the conversation. If the other person is not interested in listening and just wants to, you know, make his or her point to us, let's take that point and find out if we learn anything out of that, because and we can ask any clarifying questions if there are any. But if you feel that that feeling should be based on some present reason, not on a past experience only, but if you feel that the person is not willing to listen to you, you don't have to make your point, because you'll be wasting your breaths, you'll be wasting your efforts. No need to do that. But can you gain something out of that? Whatever points that the other person has made to you, do you think you can learn anything out of that? If you can, it's a net gain. And if the other person would be willing to listen to you, I'm sure that it will be a net gain for the other person as well. But if he's not, we can't force the other person to do what we consider to be the right thing to do.
Well, Sam, this I've noticed very often while whether you're discussing religion, politics, or generally life, that people have such fixed thing in their mind that they're not ready to even listen to what you're saying. That is the problem. So in this case, I guess you should just listen and just keep quiet and think in your mind, okay, maybe they have a point. But don't try to enforce your own views, because that's not going to help.
Right. I think I would definitely tend to agree with you. We can change our input in a conversation. Jaise ke maine pehle bhi guzarish ki, aage chalke we'll be taking up this topic in more detail, which is about framing questions. You know, how to frame positive questions, how to be more positive in our questions, how to think more proactively about what effect our question is going to have on the other person. For instance, if somebody has explained whether it is religion, whether it is politics to you, what can be my input? Because if the other person, the person that you're talking to is very committed and very convinced about his opinion, there is hardly a chance that he'll be interested in learning or listening to a dissenting opinion. But again, if it is not your experience, there's no harm in trying. But how do you try? It has to be in a manner which you feel is going to be more effective, more impactful and effective. Wo jo hai, usko aainda hum koshish karte hain ke when we reach hamari jo workshop hoti hai, jis tarah se organized hai, isme ye wala hissa jo hai, it relates to, agar waise dekhen to ye to interpersonal mamlaat se relate karta hai. Lekin hamari workshop mein isko sabse pehle liya jata hai kyunki workshop khud conversational hai. पार्टिसिपेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं. नंबर दो जो है, फिर हम कोशिश करते हैं कि अपनी वैल्यूज और अपने लिए विजन क्रिएट करें, अपने विजन को बेहतर करने की कोशिश करें कि हम कौन हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी आवर यू नो 10 इयर्स डाउन द रोड, व्हाट इज गोइंग टू बी मोइज अमजद इफ एट ऑल इफ देयर विल बी वन, तो वो क्या होगा. एक तो वो विजन क्रिएट करना है. नंबर दो ये कि अब उस विजन तक पहुंचने के लिए मैंने अपने ऊपर क्या काम करना है, और नंबर तीन ये कि अपने रिलेशनशिप्स पे क्या काम करना है. ये तीन हिस्से हैं इस पूरी वर्कशॉप के. तो ये जो हिस्सा है जिसकी आप बात फरमा रही हैं, इसमें हम एक टॉपिक ये लेते हैं कि हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस इन सच अ वे दैट द अदर पर्सन विल हैव अ बेटर इम्पैक्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस इंशाल्लाह.
शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच.
मोस्ट वेलकम जी.
Yeah, I would like to ask how to deal a person that when we asking the question, but they ignore and they're like not reply. What should we do? We should be like keep asking, or we just leave them?
Why would the other person be ignoring you, or why would?
Like if I'm asking, do you want to have lunch, and they are not reply. Then okay. Whatever question, but they ignore my questions. How to okay. deal with that?
Okay, that's a very difficult one. I cannot understand why would the other person not reply. If the other person is not hungry, maybe that is the reason that they're not replying. But again, is this a normal attitude that you see? I mean, is this normally...
Sorry, I just example, but in general question, sometimes I ask some person some question to some person, but they just quiet, they not reply.
Okay.
How, should I continue asking them or just quiet and leave them?
No, I think the first thing that you need to determine is why are they not replying? I mean, do they not understand the question? Are they aware of the language in which you are asking them? Why do you think they are not replying? Try to determine that by asking them that, you know, I'm asking you a very friendly and a very genuine question. So would you please help me understand why is it that you're not replying? Maybe this would be a good question to start with. If they give you an answer to this question, it might open doors for you to understand that maybe you should approach the problem in a different way. Am I making any sense to you? Do you understand what I'm saying?
Yeah.
So what we can do is, to begin with, we can ask them the reason that they are refusing to reply.
Okay.
Okay. Once we understand that reason, let's see what we can change in ourselves about that. Maybe what I really can't think of any reason that if this is a general attitude of a person that whenever you ask them a question, they refuse to reply. Are you related to that person? I mean, do you have a relationship with that person? If there is, what sort of a relationship would that be where you're only asking and they're not replying?
Okay.
I mean, this is something which I cannot understand. You know, when a person is angry at something, when a person is not feeling very well, we can understand that they're not really active in replying to our questions. But if this is a general attitude, it doesn't really make sense. Why would that be?
मुझे ये पूछना था कि जब ज्यादातर ये हमारे जब हम स्टार्ट करते हैं किसी को सिखाने के लिए या फील्ड में ऐसे निकलते हैं जहाँ पे हमने सीखा ही इसलिए कि सामने वाले से बात की जाए और उसको समझाया जाए दीन के बारे में खासकर तो हमारे मुआशरे में जब हम किसी से बात करने के लिए जाते हैं तो तब वो फिरका प्रस्ती बहुत ज्यादा आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में तो सामने वाला वो अनलॉजिक ही बात कर रहा है हर वक्त जिससे भी बात करेंगे सेम बात कर रहा होता है तो जब हम उसकी बात सुनते हैं तो हमारा ज़हन हमें फौरन से कहना शुरू कर देता है इसने वो रट्टी हुई बातें वो ही हमें बतानी है बार बार हम उस वक्त चाहते हैं कि इसकी बात को खत्म कर दें क्योंकि हमें पता है इसने क्या कहना उस वक्त हम खुद को कैसे उभारें कि हम इसकी पूरी बात सुने क्योंकि वो हर बार हम सेम बात ही सुन रहे होते हैं उस वक्त मुश्किल होती है कि सामने वाले की बात कैसे सुनी जाए
ये जो आपने बात सुनाई जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये यानी जिस तरह से अभी आपने इस पूरी बात का मुकदमा क्रिएट किया और ये फरमाया कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो दूसरा अपने फिरका वाराना जहन ही में रहता है बिल्कुल ऐसे ही उसने भी ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है आपके बारे में ठीक है जी यानी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही सूरतों में मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका मेरे जहन में तसव्वुर ये है कि ये एक फिरका वाराना अपनी असबियत के अंदर मुब्तला आदमी है जिससे बात नहीं की जा सकती और मुझे देखते ही उसके जहन में भी ये बात पैदा हो जाती है कि इसने अपनी पुरानी बातें वही जो रोज आके करता है वही बातें इसने फिर से रिपीट करनी है इससे बात करने का कोई फायदा नहीं देखिए दोनों के यहाँ जो एक प्रॉब्लम पैदा हो रही है और दोनों के यहाँ कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपने कुछ पास्ट के पैटर्न्स में बैठे हुए हैं और उनको तोड़ नहीं पा रहे हैं ठीक है जी वी आर नॉट विलिंग टू रिव्यू आवर ओन माइंड सेट्स अबाउट द अदर पर्सन जब हम ये नहीं करने पर अपने आप को आमादा पा रहे तो असल में मेरा ख्याल है कि फिर हमारी जो आपने बात शुरू में फरमाई कि हमने दीन का इल्म हासिल किया इसलिए कि हम दूसरों तक दावत पहुंचाएं एक तो ये कि ये इसको रिव्यू करें यानी दीन का इल्म इसलिए ना हासिल करें ज्यादा कि दावत पहुंचाएं सबसे पहले तो ये हासिल करें कि हम दीन को सीखें अपनी अपनी आखिरत संवारने के लिए और इस पर अमल पैरा हो ठीक है जी सबसे पहली बात तो ये और नंबर दो ये कि अगर आप समझते हैं कि दीन के इल्म में किसी मौके पर अल्लाह ताला ने आपको ये मौका फराहम कर दिया कि अब आप अपने दीन की अंडरस्टैंडिंग दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो इसको भी आपके आमाल हसना में शामिल फरमाएंगे लेकिन दीन का इल्म अपने लिए हासिल करें दीन का इल्म हासिल करके अपनी आखिरत को संवारना है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बात कोई मान रहे या नहीं मान रहे अपने जहन को अच्छी तरह से खुला रखते हुए दूसरे की बात सुनिए और इसका बहुत इम्कान है कि उसके नतीजे में जो आज हमारे दीन के भी और दुनिया के भी इल्म में कमी रह गई है हम उससे अपने आप को बेहतर करेंगे अब आते हैं इस इशू की तरफ कि जो आपने फरमाया कि लोग इस तरह से बात सुनने को आमादा नहीं है आप हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते जी सीरियसली इसके ऊपर ना तो आप जज कीजिए कि लोग अगर आमादा नहीं है तो अब ये कोई जहन्नमी लोग हैं या ये अब एक गॉन केस हैं इस तरह की कोई भी चीज अपने अंदर पैदा ना होने दीजिए आप उनके लिए दुआ कीजिए उनसे मोहब्बत के ताल्लुक को बढ़ाइए उनके साथ खैरखाहाना ताल्लुक को और ज्यादा बेहतर कीजिए. वंस दैट इज डन आप ये देखेंगे कि जो दिलों में दूरियां पैदा हो जाती हैं. हम हर वक्त लॉजिक नहीं बोल रहे होते जी. वी आर नॉट ऑलवेज हर रिलेशनशिप में हर वक्त अगर कंसिस्टेंटली आप इस तरह से सोचिए कि आप अगर अपने किसी बुजुर्ग रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं जो आपसे मिलते ही को 10-15 शिकायतें करेंगे कि तुम आते ही नहीं हो, तुम कभी कॉल भी नहीं करते हो, तुम कभी बात ही नहीं करते हो, तुमसे मुझे बड़ी शिकायत है, मैं तुमसे बात ही नहीं करनी. उसने यही करना है, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके उन्होंने ये करना है. हाउ कंफर्टेबल वुड यू बी, आपको कितनी उनसे जाने में और उनसे मिलने में राहत महसूस हो रही होगी. आप हो सकता है एक फर्ज समझ के उनसे मिल लें लेकिन आपको पता है कि उनके पास कोई और बात नहीं होगी, उन्होंने यही बात करनी है. यही मामला उन लोगों के साथ हो जाता है कि जिनके साथ हमारे ताल्लुकात में टॉपिक्स लिमिटेड रह जाते हैं. उन टॉपिक्स को बढ़ाएं, ठीक है ना जी, उन टॉपिक्स को ज्यादा ह्यूमन लेवल पर ले आए. यानी इंसान को अगर वो आज दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपनी बैकग्राउंड की वजह से वो अंडरस्टैंडिंग आपसे डिफरेंट है, उसके बारे में इंटरेस्ट आप भी पैदा कीजिए कि वो क्यों डिफरेंट है, वो क्या चीजें हैं कि जिसमें वो डिफरेंस, बुनियाद में किधर से वो डिफरेंस पैदा हो रहा है. हम आमतौर पर देखिए किन चक्करों में पड़ जाते हैं कि वो अब उनके और मेरे बिलीफ्स में क्या फर्क है. नहीं, वो बिलीफ्स में फर्क किसी वजह से है, अप्रोचेस में डिफरेंस है. उन अप्रोचेस के डिफरेंस को समझने की कोशिश करें अगर आप वाकई इसमें इंटरेस्टेड हैं. उम्मीद है कि अल्लाह ताला, और इसमें अल्लाह ताला से दुआ करें, ठीक है जी, और अपने दिल को खुला रखें कि आपने बात समझनी है. इसका फायदा आपको होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह. कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपकी बात माने या ना माने, आपको मौका मिलता है नहीं मिलता है, अपने ताल्लुक को अच्छा रखें और इस ताल्लुक के अच्छा रखने के नतीजे में अल्लाह ताला उनके दिल को भी खोलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है.
आमीन आमीन. सर आप यकीन करें बिल्कुल ऐसी बात है. मैंने खुद कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिल ऐसा दिया हुआ है कि कभी भी फिरका प्रस्ती हो, जो मर्जी हो, कभी दिल में नेगेटिव ख्याल नहीं आता सामने देखकर भी, क्योंकि इंसान है. मुझे पता है ये फितरत है ऐसी कि गलतियां भी होंगी, ये सब कुछ दुनियादारी है, चलता रहता है, बल्कि इग्नोर करते हैं जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ. मैं सिर्फ ज्यादा बेशक बड़े लेवल पे नहीं कर रही, लेकिन मेरा अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इवन के अपने हस्बैंड के लिए भी जब उनसे भी बात होती है तो मुझे अपने अंदर थोड़ा सा ये तहमुल करने में मुश्किल हो रही है कि मैं इसकी पूरी बात सुनूं. मैं बस इसकी पूरी बात सुन लूं ताकि मैं इसके फिर पॉइंट ऑफ व्यू को दोबारा से समझ के या कह सकूं कुछ भी. मुझे सुनने में मुश्किल होती है, मेरा दिमाग मुझे बार बार कह रहा है ये वही सेम बात करेगा, सेम बात करेगा, बस ये मुश्किल होती है.
आपने असल में ये मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए, एक तो हमने ये सोचा हुआ है कि शायद हमें आज अपनी इस गुफ्तगू को किसी नतीजे तक पहुंचाना है, इस सोच को खत्म कर दें.
ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल.
ये इस सोच को जैसे ही आप खत्म कर देंगे आपको मुश्किल होना कम हो जाएगी. आप ये सोच लें कि आज मैंने सिर्फ इनकी बात करनी है, ठीक है जी, और मैंने इनके साथ अपने ताल्लुक को बेहतर करना है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अपनी बेहतरी इससे हासिल कर लेंगे और दूसरे के लिए हो सकता है कि ये गुंजाइश पैदा हो जाए कि अगले दिन वो आपकी बात सुनने को भी आमादा हो जाए.
बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया.
तो मेरा सवाल यह है कि जी टाइम अब जो कन्वर्सेशन पैटर्न्स हैं वो डायनामिकली चेंज हो रहे हैं. एक तो ठीक है हम जूम मीटिंग्स करते हैं, क्लासरूम मीटिंग्स करते हैं या व्हाटएवर, लेकिन हमारी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा अब यह है कि वो सोशल मीडिया की कन्वर्सेशन होना शुरू हो जाती है. चाहे आप चाहें वक्त देना चाहें ना देना चाहें, लेकिन somehow lot of your time, yeah, some of your time is spent on these platforms, जिसमें WhatsApp के ग्रुप्स होते हैं, आपने जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ के ग्रुप बन जाते हैं, वो Facebook है या whatever लोग दूसरे भी यूज करते हैं. तो इसमें मैंने देखा है कि बॉटम लाइन ये बनती है कि तीन डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं पे बात होती है. एक तो रिलीजियस टॉपिक होते हैं, दूसरे पोलिटिकल होते हैं, और तीसरे अगर आप करना चाहें तो आपके सोसाइटी के सोशल इवल्स जो हैं या हमारे माशरे की मुनाफ्त जिसको आप कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा है. तो उस पे बड़े डिफरेंट پیٹرنز ہوتے ہیں وہ اچھے بھلے مطلب سمجھدار لوگ عام طور پہ بڑے تحمل والے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو جو ہوتی ہے ان پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. تو اس کے کوئی علیحدہ کنورسیشن گائیڈ لائنس ہونی چاہیے اس طرح کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر, کیا ہونا چاہیے؟
میرا خیال ہے جی کہ اپنی کانورسیشنز کو سلیکشن ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. یعنی آئی تھنک اف یو فیل کہ جن کانورسیشنز میں ہم انوالوڈ ہیں وہ میننگ لیس ہیں, ٹھیک ہے جی. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات کہ اس وقت ایک ڈرائنگ روم کانورسیشن یہ بن جاتی ہے کئی مرتبہ کہ ریلیجس لوگ کیسے ہوتے ہیں, اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا کہ اگر ریلیجس لوگ بہت برے ہوتے ہیں, اور اس سے مجھے کیا مل جائے گا کہ اگر ریلیجس لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. اسی کانورسیشن کو اگر میں بدل لوں اور یہ دیکھوں کہ میری غلطیاں جو ہیں میں ان کو ٹھیک کرنے میں کیا معاملہ کر سکتا ہوں, کیا کیا اپروچ ہو سکتی ہے میری, واٹ آئی ایم سیئنگ پرٹیکولرلی از کہ وہ چیزیں کہ جو میری زندگی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں یا جو میری زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہیں, میں ان کانورسیشنز میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انوالو نہ کروں, ان میں بہت زیادہ انڈلج نہ کروں. جن چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے اندر بہتری لے کر آنی چاہیے, جن چیزوں کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ میں, ابھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ ہم وی کین گیٹ امپیشنٹ اباؤٹ, ہم امپیشنس کو کیسے کم اوور کم کر سکتے ہیں. عام طور پر یہ جتنے بھی گروپس ہیں آپ اگر غور کیجئے گا تو اس میں اپنی ولنریبلٹی کو شو کرنا بہت زیادہ کوئی نارم نہیں ہوتی جی. ہماری کانورسیشنز میں ہم اپنی کمزوریاں بیان کرنے میں جھجکتے ہیں. یہی وجہ ہے شروع سے ہی اگر آپ غور کیجئے کہ ہم نے جو ایجوکیشن میں جو سوال کم کرتے ہیں, اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ سے اٹھ کر پوچھیں گے نہیں, اس کی وجہ یہ کہ یہ پوچھنا جو ہے ہمیں اپنی کمزوری نمایاں کرتا ہے میری. یعنی میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو یہ مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں, تو یہ سارے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نے میری سمجھ, اگرچہ ان کو سمجھ میں آ گئی ہو کہ میری سمجھ اس معاملے میں کم ہے, تو یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ آئی وڈ لائک ٹو امپروو اپون دس پوائنٹ ان مائی لائف, میں اس وقت مجھے کچھ چیزوں میں آسانی ہو گئی ہے, اپنی پریکٹس کے نتیجے میں میں نے اپنے آپ کو بہتر کر دیا, اللہ کی بڑی توفیق ملی, آسانی ہوئی, لیکن کچھ چیزوں میں میں غلطی پر ہوں اور ان کو میں ٹھیک کرنے میں آپ سے مدد چاہتا ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ دس وڈ بی اے ویری پروڈکٹیو کانورسیشن, اور میں آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ اس کانورسیشن میں پیپل ول ناٹ ہیزیٹیٹ ان گیونگ یو اے لاٹ آف گڈ ایڈوائس, ٹھیک ہے جی. جو اور اس سے ہوپفلی ایک اور بھی فائدہ ہوگا وہ یہ کہ کل کو ہو سکتا ہے شاید وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر تو یہ شیئر کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. سلیکٹ یور کانورسیشن, میری اس معاملے میں یہ بہت زیادہ آپ کو ریکویسٹ ہوگی کہ ٹرائی ٹو بی ویری سلیکٹیو اباؤٹ یور کانورسیشن. ایک وہ تعلقات ہیں کہ جدھر ہم جو ہمیں رکھنے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن ایک جو ہماری کانورسیشنز کے تعلقات ہیں اس میں جب تک کہ ہم اپنی کانورسیشن میں سلیکٹیو نہیں ہوں گے, مثال کے طور پر اس وقت کون لوگ زیادہ کرپٹ ہیں اور کون لوگ کم کرپٹ ہیں, اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے یہ بتائیے, میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں, جس سوسائٹی کو جانتا ہوں, اس میں جس کو جو موقع مل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اس میں کرپشن شو دکھا رہا ہے. اس طرح کی صورتحال میں اگر میرے جو اپوائنٹڈ یا میرے جو الیکٹڈ یا سلیکٹڈ لیڈرز ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں تو اٹ از کوائٹ ایکسپیکٹڈ فار می, ٹھیک ہے جی, اس لیے کیونکہ اگر میں کرپٹ ہوں, میری سوسائٹی کرپٹ ہے, ایک بچہ اس میں جو پیدا ہو رہا ہے اس کو اصل مسئلہ صرف یہ کہ میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے, my problem should be resolved, I am not concerned about the collectivity, I am not concerned about میری پوری سوسائٹی کی ویل بینگ کس میں ہے. میں قانون کی پابندی اس لیے کرتا ہوں تاکہ چلان سے بچوں, ٹھیک ہے جی, جدھر میں پولیس افسر کو نہیں دیکھتا ہوں ادھر میں سگنل توڑ دیتا ہوں, یہ میں ہوں. اگر میں یہ ہوں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ فرشتوں نے اتر کے میرے اوپر رول کرنا ہے. تو کچھ کانورسیشن ایسی ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, ٹھیک ہے جی. میں اور آپ اپنی کانورسیشنز کو زیادہ سلیکٹیو ہو جائیں, ان کے معاملے میں زیادہ سلیکٹ کریں کہ ہم وہ کانورسیشنز رکھتے ہیں جو با مقصد ہو. قرآن مجید نے اس معاملے میں ایک دو جگہ پر اس چیز کو بڑا واضح طور پہ بیان کیا ہے कि जो ये गलती करते हैं लोग, उनमें से एक बुनियादी गलती ये होती है कि ये बेमानी किस्म की कॉन्वर्सेशन में पड़े रहते हैं। वह हम फी खौदी या लबून, ठीक है जी, यानी हंसी मस्करी हर वक्त, मजाक और कुछ भी नहीं सिवाय बेमकसद किस्म की गुफ्तगु हैं। ये जो एस्पेक्ट है इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें, प्रोडक्टिव मीनिंगफुल पर्पजफुल कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करें अपने आप को। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत ज्यादा अपना अपने आप को भी फायदा होगा और हम दूसरों के लिए भी फायदे का बायस बनेंगे इंशाल्लाह।
Moi sahab, I find that as far as religious conversation is concerned, mujhe ek cheez bahut lagti hai ki people are always trying to reform you according to what their beliefs are, rather than try to accept ki people can have different beliefs and you should be ready to discuss their beliefs and you should be ready to hear the other person. But jo ye jo hota hai pattern of condemning the person and making sure ki no, this what I am saying the right thing, and if you don't accept this belief then you are going to be punished in the next life. So what happens with me in particular is then I just back out and I just don't want to even talk about to these people. But this is a very common pattern among people who sit and discuss religion. So how does one handle this?
I think don't take it very seriously. I mean, if you're satisfied with what your belief is, and if you feel that you are open, and if you feel that you're learning, continuously learning, and willing to give an ear to those who disagree with you, then don't give this attitude too much importance that people are very judgmental. People are judgmental, they'll have to pay for it if they are. And if they are judgmental unnecessarily, they will have to pay for it. But from this heap of, from this mess around us, we have to get all the good that we can. And it is going to benefit you. हमने इसी दुनिया में रहना है जी, we will have to live the rest of our lives, whatever is left of it, in this world. And while living here, we need to get all the good qualities, select all the good qualities and pick them and sort of adorn ourselves with these good qualities. ये जो मौका हमें मिला हुआ है इस दुनिया में रहने का, इस दौरान में हम जितनी अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर लगा सकते हैं लगा लें। दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर आपका ऐसा ताल्लुक है कि आप उनको उनकी खैरखाही में उन तक बात पहुंचा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं कि हमको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हम दूसरों की आखिरत के बारे में फैसला ना करें, वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ना तो मेरे से पूछेंगे कि तुम्हारी क्या राय है भाई, तुम्हारे ख्याल में मुझे इसको जन्नत में डालना चाहिए जहन्नम में डालना चाहिए, वो फैसला करने में इंडिपेंडेंट होंगे। अल्लाह ताला के सामने मेरे सामने जो एक्सक्यूजेस नहीं है दूसरों के वो भी होंगे। मे बी समबडी हैड अ रीजन फॉर बिलीविंग इन अ पर्टिकुलर थिंग विच आई डिड नॉट बिलीव इन, सो लेट अस बी मोर अकोमोडेटिंग, लेट अस बी मोर लविंग, लेट अस बी मोर अफेक्शनेट टुवर्ड दोज हु आर अराउंड अस, मे बी दैट विल हेल्प अस ओपन their hearts towards what we feel is right. But again, I would suggest, very strongly suggest, that from this heap of dirt that spreads around us, if there is any, from this messy world, try to get the best and put it inside yourself, because that is going to benefit you. Nothing else. किसी का judgmental होना ना होना आपको कोई फायदा या नुकसान नहीं देगा, वो उसको अपने अमल का खुद जवाब दे होना है, मुझे अपने अमल का खुद जवाब दे होना है। मैं इस अमल को अपने लिए बेहतर से बेहतर करता चला जाऊं, उसके लिए दुआ करूं, अगर मौका है तो उसको समझाऊं, और अगर मौका नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उसके लिए दिल को खोले उसके, और उसको बात सही बात समझ में आए और वो कम जजमेंटल हो, वो बजाय इसके कि अपनी जिम्मेदारी समझे, वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी दुनिया में अदा करना चाहता है कि वो दूसरों के बारे में जजमेंट्स देना चाहता है कि तुम जहन्नम में जाओगे या जन्नत में जाओगे, वो अपना एफर्ट है, मेरी जिम्मेदारी इस दुनिया में मैं उस एफर्ट की तरफ तवज्जो दूं।
सॉरी मोहित साहब, बट हमारी फिर ड्यूटी तो नहीं है कि हर एक को रिफॉर्म करने के, जैसे लोग तबलीगी जमात वाले भी जो भी करते हैं, अब अपने आप को हम रिफॉर्म करें, अपने आप को अंदर हम देखें हमारे में क्या कमजोरियां हैं। तो अल्लाह मियां ने हमारी ड्यूटी तो नहीं बनाई कि हम सब सारी दुनिया को रिफॉर्म करें अकॉर्डिंग टू व्हाट वी फील इज राइट। दिस इज द डिलेमा आई एम ऑलवेज इन।
नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप के पास जो अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सही बात किसी तक पहुंचा सकते हैं, अपने बच्चों तक, अपने दोस्त तक, अपने भाई तक, अपने बहन तक अगर पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दें, और अगर नहीं पहुंचा सकते हैं तो इससे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें। मैं अपनी सलाहियतों के बारे में भी, अपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी अल्लाह ताला के हुजूर जवाब देऊंगा। ठीक है जी, इन दोनों चीजों को मुझे सामने रखकर अपने अपनी जिंदगी के बारे में अपना लाया अमल तय करना है कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट करना है, मैंने क्या चीज देनी है और मुझे क्या मौका मैसर है। अगर आप मुतमिन हैं तो बस आपकी जिम्मेदारी अदा हो गई है जी, अगर मुतमिन नहीं है तो उसको बेहतर कर लें। बट इट इज यू, इट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। ट्राई टू कीप योर हार्ट एंड माइंड ओपन एज फार एज अदर्स opinions are concerned, maybe you learn something out of it, and don't let the idea, don't let the let this this thing become a hindrance in your mind, in your heart, that you don't like somebody or you don't like somebody's attitude, because sometimes you will be tested through an opinion which comes from a person which you don't like, and that person might give you an opinion which is the right one, and you might really benefit by accepting it. So keep your heart and mind open, and try not to let it become a hindrance for yourself that some opinion which is coming from a person which you do not like should not be accepted. Hamein is pe zyada mutanabbi rehne ki koshish karni chahiye.
Thank you so much. This is very correct. Thank you.
You're most welcome.
नीसेज और बहन के साथ देखा है कि जो व्हाट्सएप का लास्ट सीन होता है उन्होंने वो खत्म कर दिया, क्योंकि इस बात पे भी लोग जजमेंटल होते हैं कि इस टाइम अगर थे व्हाट्सएप पे, आप ऑनलाइन थे तो जवाब आंसर क्यों नहीं किया, रिप्लाई क्यों नहीं किया, और उन्होंने लास्ट सीन खत्म कर दिया और जिस तरह डबल क्लिक ब्लू है वो भी खत्म कर दिया। अब लोगों का जो ये जजमेंटल बिहेवियर यहाँ तक है तो इसको कैसे हैंडल किया जाए?
इसे बर्दाश्त करेंगे, ये अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है हमें इस तरह की माहौल में हमें भेज कर कि हम अपने अंदर सबर और बर्दाश्त के मादा को बेहतर से बेहतर करें। ये शानदार अपॉर्चुनिटी है जी, यकीन करें कि दिस वुड नॉट हैव हैपेंड in under any other circumstances जो के मौका में आज मैसर आ गया इस वजह से। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमको असल में कुछ चीजों के बारे में, हम एक चीज को ध्यान में रखिए, हम हमारे पास कभी भी किसी वाक्य की 100% इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है जी, लेकिन हम उसके बारे में जजमेंट जरूर देते हैं। ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह है, और किसी के लिए हो या ना हो, यानी इवन अगर आपकी जजमेंट ठीक भी है तब भी आपको उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज ठीक है कल को गलत भी हो सकती है, और इंसान बड़ी बड़ी अजीब और गरीब चीज है। वो अगर दो जजमेंट्स ठीक करे तो उसका लगता है कि मुझे हर चीज में ठीक ही जज करता हूँ वो इस कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इज टू इग्नोर इट। आप अगर मौका मिलता है, अगर आपसे वो ये कह रहे हैं कि आप आए थे और आप यू नो यू वर अपीयरिंग ऑन व्हाट्सएप लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, there are 100,000 different things that you are involved in. जिंदगी में आप कुछ चीजों का जवाब फौरन दे देते हैं, कुछ चीजें जो हैं उनके आपको सोचना भी पड़ता है, उनके बारे में कोई फैसला भी करने से पहले आपको 10 दफा किसी से मशवरा करना पड़ सकता है, कई चीजें आपके रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। मेरे साथ जाती तौर पर ये कई मरतबा हुआ है, एंड आई थिंक ये किसके साथ नहीं हुआ होगा ये बात कि आपने ये सोचा है कि मैं अभी इस बात का जवाब देता हूँ लेकिन आप फिर उसके बाद किसी काम में इन्वॉल्व हो गए और भूल गए, और दूसरा जो है उसके जहन में ये शिकायत जो है ये पूरी तरह से मौजूद है कि आपने जवाब नहीं दिया। इन चीजों को बहुत सीरियसली ना लें, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये कि अगर किसी की ऐसी शिकायत आपके नोटिस में आई है जो आप समझते हैं कि जायज है, तो उस पर आगे बढ़कर माजरत कर लीजिए, माफी मांग लें और कोशिश कर लें कि उस चीज के बारे में अपनी करेक्शन के लिए कोशा हो जाएं। ठीक है जी, ट्राई टू पुट मोर एफर्ट इन ट्राइंग टू करेक्ट योरसेल्फ। अगर आप समझते हैं कि किसी की शिकायत ठीक नहीं है तो उसको बता दें अगर कोई रीजन है आपके पास, और अगर फिर भी वो नहीं मानते तो इग्नोर करें इस बात को। आपकी जिम्मेदारी यही है कि अपने आप को ठीक करें, मेरी आपकी हम सब की जिम्मेदारी ये है। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने आसपास से, अपने इर्द गिर्द से, अपने दोस्तों से, अहबाब से, रिश्तेदारों से मिलती है, वो अच्छा फीडबैक है हमारे लिए जो हमें फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारा बेमानी फीडबैक भी मिलता रहेगा। तो अगर आप महसूस करते हैं कि ये इसका कोई फायदा नहीं है, यू कैन इग्नोर इट, लेकिन इसको बहुत सीरियसली ना लें, यानी उस हद तक सीरियसली लें जिधर आपके लिए करेक्शन का, इम्प्रूवमेंट का बायस बनता है। इससे ज्यादा उसको अपने दिल से ना लगाएं, उस पर परेशान ना हो। आई डोंट थिंक दैट विल बेनिफिट यू। हर एक को दुनिया में आप, वो जो किसी ने कहा है ना जी कि आप कुछ लोगों, आई मीन यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी ऑल द टाइम। इट इज पॉसिबल टू मेक सम पीपल हैप्पी सम ऑफ द टाइम, बट नॉट एवरीबडी एट ऑल टाइम्स। तो जस्ट एक्सेप्ट दैट कि ये इसलिए, इससे आगे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एंड टेक लाइफ वेरी इजी, अपनी करेक्शन के बारे में हर वक्त सेंसिटिव रहें इंशाल्लाह कि हमने अपने आप को बेहतर करना है। और इस फीडबैक को अगर जिधर भी आप यूज कर सकते हैं अपनी करेक्शन इंप्रूवमेंट के लिए, जरूर यूटिलाइज करें।
अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
सर मेरा जो बुनियादी दो क्वेश्चन है, एक तो रिलेटेड ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना वो गलत होने के बावजूद हर्ट हो जाते हैं और आपको उसमें इमोशनलाइज करते हैं कि आपने, मतलब वो गलती में है, गलती के बावजूद भी बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करें, वो मतलब एक सही बंदे को जो उनको एहसास दिला रहा है कि आपने बहुत गलत किया है, वो हर्ट हर्ट अपनी फीलिंग्स को ऐसे शो करते हैं जैसे वो बहुत दुखी हैं और वो मतलब इल्ज़ाम आपको ठहरा रहे होते हैं कि आपकी वजह से वो दुखी हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसको मिसाल देता हूँ, जैसे सम टाइम ये होता है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे आजकल के दौर में ना हमें हमारे उल्मा को चाहिए कि वो वालदेन के हकूक के अलावा बच्चों के हकूक के बारे में भी बात करें, क्योंकि हमारी मोस्टली जो यूथ है ना वो यकीन करें बच्चों वालदेन से बहुत ज़्यादा तंग है, क्योंकि वालदेन एज के इस एज में होते हैं, एज के इस मतलब वो इस एज में होते हैं कि हमारे ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि आपने उफ तक नहीं कहना, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपको इतना इमोशनलाइज करते हैं और पता भी चल रहा होता है कि गलत हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये फीलिंग्स देते हैं कि हम मतलब हर्ट हो रहे हैं आपसे। तो इस मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ तो दीन ने, अल्लाह ताला ने हमें बाउंड कर दिया, दूसरी तरफ से हम कुछ कह भी नहीं सकते उनको, और उनको अगर समझाएं तो वो कहते हैं कि बस ठीक है, असी खाना पीना छोड़ देना है या मेडिसिन नहीं, हमें किसी किस्म की हेल्प नहीं आपसे चाहिए। तो जो लोग गलत होने के बावजूद आपको ये इल्जाम ठहरा रहे होते हैं कि आपकी वजह से हम दुखी हैं, तो इसमें हमें हमें क्या करना चाहिए? कहाँ तक हम सब्र करें कि सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है इंसान का सम टाइम, कि यार ये क्या है, मैं किस सिचुएशन में फंस गया हूँ, ना इधर जा सकता हूँ ना उधर जा सकता हूँ।
देखिए, एक तो ये क्लियर रखें कि वालिदैन के हकूक जो हैं उनको ठीक रखें अपने ज़हन में। ठीक है जी, वालिदैन का जो हक अल्लाह ताला ने बहुत दफ़ा बयान फरमाया है वो ये है कि हमें उनके साथ एहसान का रवैया रखना है, यानी बेहतरीन रवैया रखना है, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। ठीक है जी, जब व्हेन आई से दिस, ये जो आपने मिसाल दी है इसको, ये बड़ी अच्छी मिसाल है उसकी कि जिधर वो असल में कुछ थोड़ा सा एक गलत हो गया। ये जो आपने अभी फरमाया ना कि उनके साथ हमें उफ तक नहीं करनी, ये बात असल में अरबी का उफ है। ठीक है जी, ये अरबी का उफ असल में उर्दू का उफ नहीं है, ये वो नहीं है कि उफ ये क्या कर दिया, ये बड़ी तकलीफ हुई है, वो वाला उफ नहीं है। ये उफिन लकुम जो है ये असल में एक डांट का कलमा है कि तुम, मतलब डैम यू, जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फिटे मुंह तुम्हारा, ये तुम्हें, ये इस तरह की कोई बात नहीं करनी उनके साथ। ये कुरान मजीद में और जगह पे भी आया है। तो एक तो ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने जिस चीज का बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है वो ये कि मुझे उनके साथ नरमी का लहजा रखना है, मुझे उनके लिए जब तक वो हैं उनके लिए उसमें भी दुआ करनी है, जब वो चले जाएं इस दुनिया से उस वक्त भी उनके लिए दुआ करनी है। इसके बाद यानी मुझे हक मेरे लिए जो है जो चीज इंसाफ का तकाजा है मुझे उस पर खड़े होना है। वालिदैन का मेरे ऊपर ये हक नहीं है कि वो उनकी वजह से मैं किसी झूठ को सच या किसी सच को झूठ बनाऊं, ठीक है जी, ना तो मुझे किसी के साथ ज्यादती करनी है उनकी वजह से, ना मुझे खुदा के मुकाबले में किसी को शरीक ठहराना है उनकी वजह से, मुझे अपनी जिंदगी गुजारने में जो चॉइसेस हैं वो मेरी चॉइसेस हैं क्योंकि मेरी जिंदगी है, मैं उसका हक रखता हूं कि मैं गुजारूं। ये सारे फैसले करते हुए मैं उनके साथ बहुत नरमी का बहुत अच्छा रवैया रखूंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी बात के आगे अतात रखूंगा। यानी अतात का जो मामला है ये है जो असल में प्रॉब्लमैटिक है। यानी प्रॉब्लम को समझ लें कि मसला यूं नहीं है कि इंसान को हर मामले में अल्लाह अपने अपने वालिदैन के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। मसला ये है कि जिस चीज को आप ठीक समझते हैं, जिस चीज यानी मैंने अपने अपनी एजुकेशन लाइफ में मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं, ठीक है जी, और वो बड़े सरप्राइज हुए थे जब मेरे मैट्रिक में इतने नंबर आ गए थे कि मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन भी ले सकता था। जब वो आ गए और जब उन्होंने मैंने इसका इसरार किया कि नहीं मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ, मेरा तो शौक कुछ और है, तो उन्होंने इस बात पर 2-3 दिन प्रेशर डाला। उसके बाद उन्होंने कहा फिर जो मर्जी कर, खसमानू का जो पंजाबियों का तरीका होता है। और इसके नतीजे में यानी आई डिसाइडेड व्हाट आई हैड टू डू एंड आई डोंट थिंक दैट इसके नतीजे में कोई भी बदतमीजी का मौका आया होगा। बस मैंने यही कहा कि नहीं मुझे आप गुजारिश है मेरी करने ने, गलतियां भी हुई हैं जिंदगी में, यानी ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं की हैं, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि यानी देर आर सर्टन चॉइसेस जो आप की हैं, आपकी औलाद की हैं, वो उसमें अपना हक ना समझें कि ये मैंने ही फैसले करने हैं जिंदगी में। यानी इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इस चीज को बैलेंस आउट करना बड़ा जरूरी है, इस चीज को समझना कि दीन असल में वालिदैन के जो हकूक दे रहा है उसमें ये इस तरह की बात है कि आपकी औलाद जो है 2 साल का बच्चा जो है वो जितना मर्जी आपको तंग करे, जितना मर्जी तंग करे, आप उसको गले से ही लगाएंगे ना। यानी आप ये तो नहीं कर सकते कि वो अगर आपसे छुरी चाहते हैं और अपना गले पे चलाना चाहते हैं तो आप कहेंगे चलो ठीक है करने दो, नहीं, आप उसको जबरदस्ती रोक भी देंगे, आप उसके रोने को भी बर्दाश्त कर लेंगे, आप उसकी गलतियों को भी माफ कर देंगे। आपने अच्छा रवैया रखना है उसके साथ, बिकॉज वो अभी बच्चा ऐसा है कि जो समझ नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही यानी वालिदैन जब एक खास उम्र को पहुंच जाते हैं, जिस वक्त उनकी सिचुएशन वापस कुरान मजीद के मुताबिक वही हो जाती है जो कि बिल्कुल आगाज में बचपन में लिकैला या बाद इल्मिन छाया के का जो मिसाक बन जाते हैं, तो उस मौके पर भी हमें उनके साथ बेहतरीन रवैया रखना है। ये मतलब नहीं है इसका कि बेहतरीन रवैया रखते हुए उनकी सारी बात माननी है, इस चीज को क्लियर रखें। आपको अपने रवैये को
यानी कि अतात उनकी जरूरी नहीं है, सिर्फ हुस्ने सलूक करना है उनके साथ,
हुस्ने सलूक की जिम्मेदारी है जी। यानी आप उनके खिलाफ जो है ना जी एक रौनत आमेज रवैया वो कभी भी नहीं रख सकते। यानी देखिए फिर कुरान मजीद ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही और एक ही वालिदैन ही के लिए कही के जो सूरह लुकमान में कहा ना कि वश्कुरुली वाले वालिदैक, कि तुम मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, ये शुक्र शुक्र का रवैया रखना, और फिर दूसरा उनके लिए दुआ करते रहना हर वक्त कि अल्लाह ताला रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये वाले रवैये जो है दीज आर मोर इम्पोर्टेंट। ये बात कि आपने उनकी हर बात को मानना है, यानी मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आपको अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाया है और आपके अपने कुछ ज़ौक हैं, कुछ आपकी अपनी इंटेनेशन हैं, कुछ अपने पोटेंशियल्स हैं, उनको आप पहचानते हैं, वालिदैन जरूरी नहीं कि पहचानते हो। नॉट एवरी पर्सन, नॉट एवरी पेरेंट इज इन दिस पोजीशन।
राइट सर। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा इजाजत दें तो वो कर सकता हूँ। हाँ जी, मेरा ये था कि समटाइम ये होता है कि आप जैसे कि हम दीन को इलम के तौर पर जब स्टडी करना शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हकायक हमारे सामने आते हैं, तो आपको पता है जो हमारे साथ जो स्टार्ट से ही तकलीदी किस्म का ज़हन होता है, जो लोग होते हैं, जो रिवायत पसंद लोग हैं, तो वो ज़ाहिर बात है फिर एक क्रिटिसिज्म भी आपको करते हैं कि ये आप कौन सी नई बातें कर रहे हैं। अब होता ये है कि आपने उस पर एफर्ट की होती है, आपने दीन को स्टडी किया होता है, हर चीज़ खुद पढ़ी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ना कभी कुछ पढ़ते हैं, जैसे कुरान पाक भी नहीं उन्होंने इवन तर्जमे के साथ पढ़ा होता, या अहदीस का मुताला नहीं किया होता, या कोई भी चीज़ें उनको इल्मी तौर पे कभी स्टडी नहीं किया होता, उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन जब कभी भी वो आपके साथ बैठेंगे तो वो आपके साथ ऐसी ऐसी बातें करेंगे जैसे पता नहीं दुनिया के सबसे बड़े आलम ही वो हैं, मतलब कि आपको कुछ नहीं पता। तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? क्या हमें सब्र से काम लेना चाहिए या हमें हंस देना चाहिए? क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जो कि नॉर्मली माशरे में सबको पता होती हैं, जब आप उनसे ऐसी बात करें जो इल्मी है और दलाइल के साथ बात करें तो वो लोगों का बड़ा जज्बाती पैशनेट किस्म का एटीट्यूड हो जाता है, और वो मतलब आपके साथ बहस मुबाहिसा करते हैं। इवन के मैं अगर आप उनसे पूछें भैया आपने कभी कुरान पाक तर्जमे से पढ़ा है या खुद स्टडी करने की कोशिश की है चीज़ों को, तो वो कहते हैं नहीं हमें इतनी ज़रूरत नहीं, हमें जो उलमा ने कह दिया जो हम उनके ऊपर चलते हैं, हम अपनी तरफ से दिमाग नहीं लड़ाते। तो मेरा बुनियादी क्वेश्चन ये है कि दीन को बतौर इलम हम उसी तरह ही लेंगे जिस तरह से हम दूसरे उलूम को लेते हैं, उसी तरह उनके दलाइल का दलाइल देखेंगे, या कि बस जो किसी ने हमें दीन के नाम पे उलमा ने कह दिया उसका करैक्टर देखेंगे कि इसने कह दिया तो ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो इस तरह के लोगों के बारे में क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए? हमें सब्र से काम लेना चाहिए या हमें खुद भी दीन पे और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है?
दो सवाल मैं समझाऊं जी आपके। एक ये कि दीन का इल्म दूसरे उलूम से कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है जी। यानी दीन का इल्म बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से दूसरे उलूम हैं। हर इल्म का अपने कुछ पैराडाइम्स हैं, हर इल्म के कुछ प्रेमिसेस हैं, दीन के इल्म के भी कुछ प्रेमिसेस हैं। इसको उसी तरह से अप्रोच किया जाएगा, उसी तरह से समझा जाएगा, उसी तरह से उसको क्रिटिकली रिफ्लेक्ट भी किया जाएगा। उन लोगों के बारे में जो रवैया होगा आपका, मेरा ख्याल ये है कि असल में जो चीज है वो वही है जो हम बीच में कई सवालों के जवाब में कर चुके हैं कि एक आदमी से हम क्या सवाल कर सकते हैं कि जिससे उसको सोचने पर आमादा करें। मिसाल के तौर पर क्या ये पूछा जाएगा आपका ये पूछना कि दीन कोई समझने की चीज है भी या नहीं है? यानी अगर नहीं, उनके लिए एक दीन कोई समझने की चीज ही नहीं है मिसाल के तौर पर, तो फिर यानी किस तरह समझाया जा सकता है? हम बड़ा शौक है हम मुसलमानों को खास तौर पर कि दीन की दावत दुनिया में फैला दी जाए और सारों को मुसलमान कर दिया जाए। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? यानी इस बुनियाद पर कि ये मेरे बुजुर्गों की रिवायत है इस वजह से तुम्हें मान लेनी चाहिए। किस बुनियाद पर मैं ये किसी से कहूं कि तुम मान लो क्योंकि ये मेरे, क्योंकि उनके अपने बुजुर्गों की भी कुछ रिवायात हैं, वो उन पे क्यों ना खड़े हों? यानी अगर तो दीन कोई समझने की चीज है तो फिर पहले मुझे समझनी चाहिए, और अगर दीन कोई समझने की चीज ही नहीं है तो फिर हमें इसके बारे में जज्बाती होने की क्या जरूरत है? जो मानना चाहते हैं उसको मानने दिया जाए। यानी इस पर जो तजाद फिक्र है उसको नुमाया करने के लिए हमें कुछ, वही जो मैंने अपने तीसरे दूसरे सेशन में एक स्किल का इंट्रोडक्शन कराया था, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक डिटेल्ड हम वर्कशॉप जल्दी ऑर्गेनाइज करें कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की आदत डालिए कि दूसरे की पैराडाइम्स क्या हैं, दूसरा किन किन अजम्पशंस के साथ जिंदगी पर गौर कर रहा है, चाहे वो दीन हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो अपना अपने जाती मामलात।
लेट मी बी स्पेसिफिक, मेरा दोस्त जो है वो स्वीडन में है और उसकी मैरिड था, पाकिस्तानी है दोनों कपल, लेकिन उनके वालदेन जो है वो इतना प्रेशराइज उसको किया है कि उसको कह रहे थे कि अपनी वाइफ को तलाक दे दें क्योंकि वो हमारी कास्ट से नहीं है, जो कास्ट मतलब हमारे पाकिस्तान में गुजर बट बरादरी ये राइम वगैरह, सिर्फ ये लॉजिक थी उसके पेरेंट्स की और उसके बेस पे उन्होंने कहा है कि उसको जो है वो डाइवोर्स दे दो, और 5 साल ये मसला रहा है और उसने अपने वालदेन के आगे हार मान के कि मैं उफ नहीं कर सकता, तो उसने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दी है। मैं आपकी इस मामले में राय जानना चाहूँगा कि आप इस मामले को किस तरह देखते हैं और कोई वे फॉरवर्ड, क्योंकि अभी उसने एक ही टाइम में 3 दफा दे दी है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा प्लीज गाइड कर सकें।
मेरे ख्याल में जी अगर तो सिर्फ ये वजह है देने की तो ये बहुत बड़ा जुल्म किया जी, और इसका उनको भी उनके वालिदैन को भी आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। यानी एक एक खातून जो है जो अपने घर को छोड़कर आपके घर आ गई है और वो आपके जाहिर के एक ताल्लुक में अब है, उसको आप महज इस वजह से कि वो पैदा किसी और जगह पे हुई है और उसको अल्लाह ताला ने किसी और खानदान में पैदा किया, अगर आप तलाक दे रहे हैं तो इससे बढ़कर जुल्म ज्यादती और क्या हो सकती है। और अगर ये वालिदैन के कहने पर भी किया है तब भी बहुत बड़ा जुल्म किया है, एंड वी विल हैव टू बी आंसरेबल फॉर दैट। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर वो वापस ले सकते हैं, तलाक का जहां तक ताल्लुक है वो मेरा ख्याल है कि किसी से इस मामले में राय लें, इफ दे कैन रिकंसाइल अगेन जरूर करें, लेकिन ये दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग एक्ट। और इस मामले में मैं ये पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि वालिदैन के खिलाफ उफ वला तकुल लहुमा उफ़िन का जो वर्ड है वो उससे मुराद क्या है, ये वो उफ नहीं है जो उर्दू जुबान में बोला, उफ अल्लाह जिसको आप कह देते हैं वो, ये वो वाला नहीं है, उफ ओ ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट दैट उफ, ये असल में डैम यू कहने का उफ है, डांटने का, ठीक है ना जी। ये अपने वालिदैन को तुम डांटोगे नहीं, मतलब बुरा भला मत कहो, इस तरह से ऊंची आवाज में मत करो, तुम उनके खिलाफ यानी अपने अपने जो एक जगह पे कहा कि अपने पर जो है उनको अतात के पर को झुकाए रखो, यानी अपनी जो आजवी है उनके सामने शो करो, बजाय इसके कि तुम उनके साथ बड़े ताकत, क्योंकि एक स्टेज आएगी जब वालिदैन कमजोर पड़ जाएंगे आप ताकतवर होंगे, तो बी वेरी केयरफुल बिकॉज दिस इज गोइंग टू दिस टाइम इज गोइंग टू फ्लाई अवे फ्रॉम यू। ये जो जिंदगी आज आप समझते हैं कि हम बड़े कवि हैं बड़े ताकत में हैं, ये चंद दिनों की खेल है जी, ये ताकत चाकत सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना जी। इसलिए आए हमजा साहब मैं इस मामले में इट्स वेरी सैड टू हेयर दिस, बहुत अफसोस हुआ है कि ये हम ये कितनी ज्यादती कर सकते हैं, हमको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। अगर इफ यू कैन रिवर्ट दिस डिसीजन प्लीज उनसे कहें कि वो जरूर रिवर्ट करें, दिस वुड बी, अब जाहिर है कि ये मैं इस अजम्पशन पे कह रहा हूँ कि ये दिस वाज द ओनली रीजन। अगर उनके
मैं पिछले 5 साल से मैं डिस्कशन में उनके साथ और इस वजह से मुझे जो एग्जैक्ट रीजन है वो मुझे पता है, मैं उसके वालिदैन से भी मिल चुका हूँ, तो दैट वाज द ओनली रीजन। वो तो बात ही नहीं होती जो हमारे कोई और दूसरी रीजन भी नहीं हो सकती जो हमारे माशरे में यूजली होती है बहू की सास के साथ व्हाटएवर, तो वो मसला भी नहीं था। बोथ आर वर्किंग, बोथ आर इंजीनियर्स और बोथ आर प्रोफेशनल, कोई और दूसरी रीजन नहीं थी।
ये इस तरह के मामलात में आप अपने वालिदैन के साथ भी जो एहसान का रवैया है उसका तकाजा ये है कि उनकी गलत बात को पर उनके आगे सरनिगुम मत करें, वरना वो भी जवाब दे होंगे और आप भी जवाब दे हो जाएंगे। यानी प्लीज कम्युनिकेट दिस टू योर फ्रेंड दैट इफ ही कैन रिवोक दिस, अगर कोई और रीजन नहीं है उनके पास तो प्लीज डोंट डू दिस बिकॉज दिस वुड बी अ वेरी रॉन्गफुल एक्ट, बहुत इनजस्टिस हो जाएगी जी। अल्लाह ताला जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करता, वो कभी पसंद नहीं करता कि जुर्म किया जाए अपने दायरा इख्तियार में।